Relax and indulge at Nemacolin's Woodland Spa and Holistic Healing Center, where you'll find relaxing massages and treatments, cutting-edge therapies, and traditional holistic practices to uncover life balance and overall wellness. Nemacolin's Holistic Healing Center offers guests innovative, personalized, and unique offerings, including yoga retreats, special services like infrared light therapy, cryotherapy, and more that you won't find anywhere else. To plan your wellness escape, visit nemacolin.com for more details.
This is Red Podcast and you are listening to Indian Murder Mystery.
हेलो नमस्कार आप सबको. रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं हूं सौरभ आपके साथ. शर्लक होम्स ये किरदार एक इंग्लिश डिटेक्टिव है. इस किरदार के ऊपर उपन्यास यानी नॉवेल्स लिखे गए हैं, फिल्में बनी हैं, टीवी सीरीज बने हैं और स्टेज प्लेज भी ढेर सारे हुए हैं. अगर मैं कहूं कि यह किरदार वैसे तो एक लेखक आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी कल्पना से लिखा था, लेकिन आज ये किरदार हॉलमार्क बन चुका है डिटेक्टिव्स के लिए, एक किस्म का ऑनर है इन्वेस्टिगेशन लाइन में, तो ये बात गलत नहीं होगी. शर्लक होम्स नाम की कई किताबें हैं जिसमें यह किरदार अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करके मर्डर्स सुलझाता है. किताब में लिखी गई टेक्निक्स उस समय पुलिस या फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में एग्जिस्ट भी नहीं किया करती थी, लेकिन आगे चलकर आर्थर कॉनन डॉयल की कहानियों से प्रेरित होकर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को दुनिया भर की पुलिस ने अपनाया और आज उनका इस्तेमाल करते हैं केसेस को सॉल्व करने के लिए. इनमें से एक टेक्निक है डीएनए टेस्टिंग. जी हाँ, डीएनए टेस्टिंग के इस्तेमाल से मुजरिम पकड़ने के आइडिया को शर्लक होम्स ने एक नॉवेल में डिस्कस किया था. उस समय कल्पना थी लेकिन आज हकीकत है. आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आपको इस डिटेक्टिव के बारे में ही क्यों बता रहा हूं. इसका जवाब यह है कि हमारे देश में भी कई प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, लेकिन हमारे यहां प्राइवेट डिटेक्टिव्स को लोग तभी याद किया करते हैं जब उन्हें लड़की का रिश्ता करवाना होता है या फिर अगर किसी इंश्योरेंस एजेंसी को एक बड़ा क्लेम सेटलमेंट पास करना होता है. क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव्स को इन्वॉल्व करने का ख्याल सिर्फ किससे कहानियों में ही आता है. विदेशों में प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी एक लेजिटिमेट प्रोफेशन है, लेकिन हमारे यहां इस प्रोफेशन को हमेशा हंसी मजाक की नजरों से ही देखा जाता है. लेकिन 2016 के एक मर्डर केस में जब पुलिस फोर्स ने हार मान ली थी, तब एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने केस को सॉल्व किया. इंडियन मर्डर मिस्ट्री में मैं आपको आज यही सुनाने वाला हूं. दिल्ली के पास एक जगह है यमुना नगर, जिसे पहले लोग अब्दुल्लापुर के नाम से जानते थे. ये काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में और यहाँ प्लाईवुड, पेपर, टिम्बर ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के प्लांट्स हैं. यमुना नगर में रहते थे अमित बत्रा. अमित की पैदाइश दिल्ली की थी और स्कूलिंग, कॉलेजेस सब कुछ इन्होंने दिल्ली में ही किया. फैमिली बैकग्राउंड की बात करते हैं तो अमित बत्रा एक करोड़पति खानदान से थे. अमित यमुना नगर में अपना बिजनेस संभाल रहे थे. कॉलेज में साथ पढ़ने वाली एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया. प्रिया ने कॉलेज में मिस कॉलेज का खिताब जीता और फिर बाद में मिस दिल्ली का भी टाइटल जीता. प्रिया बेहद खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती का दीवाना अमित भी हो गया था. पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर अमित बत्रा और प्रिया ने 1998 में शादी कर ली. एक सुखी परिवार, घर गृहस्थी, दो बच्चे और ऐशो आराम की जिंदगी जीते अमित और प्रिया की जिंदगी में एक दिन अचानक तूफान आ गया. अमित और प्रिया की शादी को 18 साल बीत चुके थे. 27 मई 2016 को सुबह सुबह दरवाजे पर खटखट यानी एक नॉक किस्म की होने लगी. प्रिया बत्रा चिल्ला रही थी और लोगों को मदद के लिए बुला रही थी. अमित बत्रा अपने बेडरूम में थे और लग रहा था जैसे उन्हें कुछ हो गया है. प्रिया के बुलाने पर पड़ोसी भागे भागे आए और फिर अमित के माँ बाप भी वहां पहुंचे. लोकल डॉक्टर्स को बुलाया गया जिसने आकर बताया कि अमित अब इस दुनिया से जा चुका है. ही इज नो मोर. 42 साल की उम्र में अमित बत्रा अपने पीछे अपनी बीवी, अपने दो बच्चे और अपने माँ बाप को छोड़कर चले गए. प्रिया ने बताया कि अमित को अचानक दिल का दौरा पड़ा था. दुख से भारी चीखें और आंसुओं ने बत्रा परिवार को जैसे घेर लिया था। पूरे घर में हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखों में आंसू थे और सबसे ज्यादा शोक में थी प्रिया। रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग और नजदीकी दोस्त मिलकर समझाते थे, बत्रा फैमिली को सपोर्ट देते थे। और फिर 27 मई 2016 को ही शाम के वक्त अमित बत्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आनंद फानन में हुए इस हादसे को हर किसी ने भुलाना शुरू कर दिया। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसान को उससे उबर कर आगे बढ़ना ही पड़ता है। प्रिया ने भी वही किया। प्रिया ने फिर से जिम जाना शुरू कर दिया। प्लाईवुड का जो बिजनेस अमित बत्रा ने अपने कंधों पर उठा रखा था और इसकी बागडोर संभालते थे, उनके पिता ने बड़े गर्व से कहा था कि बेटा इस बिजनेस को ऊंचाई पर ले जाना, और उस ऊंचाई पर ले जाना जहां तक मैंने कभी सोचा भी ना हो। बिजनेस में प्रिया ने कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, लेकिन अमित के गुजर जाने के बाद प्रिया ने वो बिजनेस अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिया। अब कंपनी की डायरेक्टर प्रिया बन गई थी। एक औरत किसी कंपनी के सबसे बड़े ओहदे पर बैठ जाना लोगों को अक्सर रास नहीं आता, तो हजार तरह की बातें बननी शुरू हो गई। कोई कहता प्रिया का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई कहता उसने अपने पति अमित को जहर देकर मार दिया, कोई उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता तो कोई उसे इंप्रेस करने के लिए उसके पीछे दुम हिलाता नजर आता। इन सब के बीच में अमित के माता पिता अपने बेटे की याद में उसके उनसे पहले गुजर जाने के शोक में काफी मायूस थे। पिता की उम्र उस समय 70 साल की थी और मां की तकरीबन 65 साल, यानी उम्र का वो दौर जहां पर आकर ज्यादातर लोगों के शरीर में ताकत खत्म होने लगती है या कम होने लगती है, लेकिन दिल में बच्चों के लिए प्यार और उनके पास रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। कुछ ऐसा ही हाल अमित के माता पिता का भी था, खासकर अमित की मां श्रीमती उर्मिला बत्रा का। उर्मिला जी ने कई बार कहा कि उनका बेटा अमित उनके सपने में आता है और कहता है कि मैं हार्ट अटैक से नहीं मरा। यह सपना उर्मिला जी को कई बार आता था। उन्होंने अपने पति से इस बात का जिक्र किया, लेकिन उनके पति ने इस बात को हमेशा नजरअंदाज कर दिया। उनके पति श्री विजय बत्रा अपना बिजनेस बेटे को सौंपने के बाद रिटायर होकर एक सुख और शांति से भरी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन अपने ही बेटे की अर्थी अपनी आंखों के सामने उठने का दर्द क्या होता है, ये विजय बत्रा साहब को देखना भी पड़ा और अब उसके साथ जीना भी पड़ रहा था। उर्मिला जी रोज अपने पति से कहती थी कि उन्हें पुलिस से बात करनी चाहिए और अमित की मौत की जांच करवानी चाहिए, लेकिन रिश्तेदारों ने भी उर्मिला जी को यही समझाया कि मां का मन उन्हें ये मानने नहीं दे रहा था कि अमित अब इस दुनिया में नहीं है। और इन्हीं ख्यालों की वजह से अमित बार बार उनके सपने में आ रहा था। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि विजय बत्रा जी ने पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई और पुलिस पर प्रेशर भी डाला कि अमित के केस की जांच जल्द से जल्द की जाए। प्रिया बत्रा को विधवा हुए अभी एक महीना नहीं बीता था, लेकिन जिस तेजी से उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया था वो देखकर यही लग रहा था कि शक की सुई का कांटा उन पर आकर रुक रहा है। कंपनी को अपने नाम करवाने के बाद प्रिया ने दोनों बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। एक औरत जिसका पति 18 साल की शादी के बाद अचानक मर जाए, उस सदमे को सहते हुए एक ही महीने में वही औरत अपने बच्चों को अपने से दूर भेज दे, ये सोचने की बात है। लेकिन खैर, न सिर्फ ऐसा सोचा, ऐसा हुआ भी, और वो भी तेजी से। क्या ये सब पॉसिबल था, क्या ये सब मुमकिन था? शायद हां, यह हो सकता है नहीं। दाल में कहीं कुछ तो काला था, और अमित के मां बाप ने इस काले को ढूंढने के लिए पुलिस कंप्लेंट करवाई, और जब उससे बात नहीं बनी तो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया गया। क्या हुआ अमित बत्रा मर्डर केस में आगे, ये जानिए अगले एपिसोड में ओनली ऑन रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट्स इंडियन मर्डर मिस्ट्री। मैं हूं सौरभ आपके साथ।
यू आर लिसनिंग टू रेड पॉडकास्ट इंडियन मर्डर मिस्ट्री, रिटन बाय ध्रुव लॉ, ऑडियो डिजाइन बाय आर्यन पांडे, क्रिएटिव डायरेक्टर सौरभ भ्रमर, Send your feedback and suggestions right to us at podcast@redfm.in.
When someone is hurt in a truck accident, the one question everyone has is, why did this terrible collision happen? To answer that question takes an experienced team of lawyers and experts. Not everyone has this type of experience. At Colombo Law, we are truck injury lawyers. It's what we do every day. When someone is hurt by a truck, Colombo Law is the law firm people call to get answers. Hurt by a truck? Call Colombo Law.